Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. Adi Guru Shankaracharya Virachit Dakshinamurti Stotra ka prasanga hai. Viswam darpana drishyamana nagari tulyam nijantargatam pasyannatmani mayaya bahirivot bhutam yatha nidraya yah sakshat kurute prabodha samaye svatmanamevadvayam tasmai sri guru murtaye namaidam Sri Dakshina Murtaye Bijasyantarivankuro Jagadidam Prangnirvikalpam Punar Maya Kalpita Desakala Kalana Vaichitrya Chitri Kritam Maya Viva Vijrimbayatya Pimaha Yogi Vayah Svechaya Tasmai Sri Guru Murtaye Namaidam Sri Dakshina Murtaye Yasyaiva Spuranam Sadatmakam Asat Kalpartakam Vasate Sakshatattamasiti Veda Vachasa Yo Bodhayatya Sritan Yat Sakshat Karanat Bhavenna Punara Vrittir bhavambo nidavo tasmai sri guru murtaye namaidam sri dakshina murtaye nana chidra ghatodara sthitamaha deepa pravavasvaram jnanam yasya tu chakshuradhikarana dwara vahispandate Janamiti tameva vantamanubhat Tetat samastam jagat Tasmai Sri Guru Murtaye Namaidam Sri Dakshina Murtaye Deham pranam apindriyanyapi chalam Buddhim sachunyam vidu Stri balanda jado pamastvahamiti Branta Brishambadinaha Maya Sakti Vilasa Kalpitamaha Vyamoha Samharine Tasmai Sri Guru Murtaye Namaidam Sri Dakshina Murtaye Rahu Grasta Divakare Hindu Sadrisho Maya Samachadanat Sanmatraha karano pashangharanato yobhut susuptaha puman pragasvapsamiti prabodha samaye yaha pratyabhigyayate tasmai sri guru murtaye namaidam sri dakshina murtaye balyadiswapi jagradadisutatha Sarva swavastha swapi vyavritta swanu vartamana mahamityantah spurantam sada svatmanam prakati karoti bhajatam yo mudraya bhadraya tasmai sri guru murtaye namaidam sri dakshina murtaye Vishwam pasyati karya karanataya Swaswami sambandatah Shishyacharyataya tathaiva pitriputra adhyatmana Swapne jagrati vayaye sapurusho Maya paribhramitah Tasmai sri guru murtaye namaidam Sri Dakshina Murtaye Bhuram Vansya Nalo Nilo Ambara Mahar Nato Iman Supuman Ityabhati Chara Charatmakamidam यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्माद्दमुस्मिंस्तवे तीनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमिति विभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्धि तत्पुनरष्टता परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है, पांचवें श्लोक की व्याख्या चल रही है। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदो स्त्रीबालान्ध जडोपमास्त्वहमिति भ्रांता भृशंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। भ्रांता भृशंवादिनः अनिर्वचनीय माया शक्ति के चलते उस परम तत्व को निश्चय करने के लिए बहुत लोग भ्रांत हैं और उसी भ्रांति के चलते उनको जितना समझ में आया और उसी को परम तत्व मानते हुए बैठ गए हैं। हे शिवा, हे ज्ञानमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति, ये आपके ही एक करुणामूर्ति है जो जिसके कृपा प्राप्त होने पर भ्रांति हट जाती है। जब तक आपकी कृपा प्राप्त न हो तब तक इसी तरह सभी लोग भ्रांत ही रहते हैं। कौन कौन भ्रांत हैं, किस प्रकार से भ्रांत हैं, इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। सबसे पहले तो संसार में ज्यादा से ज्यादा मनुष्य देह को ही आत्मा मानते हैं। देह के अतिरिक्त आत्मा मान नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना ही बेकार है ऐसा वो लोग मानते हैं। देह के अतिरिक्त आत्मा न होकर आत्मा नहीं मान रहे हैं ऐसी बात नहीं, वो भ्रांति से वो मानते नहीं है कि देह से अतिरिक्त आत्मा होगा। ये अति स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति है। कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, इस पहले कोटि से थोड़ा सुधार है इनमें, क्योंकि ये ज्ञान मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार के जो मैं के साथ इंद्रियों का संबंध है यही आत्मा है। इंद्रिय आत्मवादी है, कुछ लोग इस तरह भ्रांत हैं, और कुछ लोग प्राण को आत्मा मान रहे हैं और इस प्राण को ही आत्मा मानने के बारे में तो मुझे लगता है पूरे विश्व में 100 में से 100 ही व्यक्ति भ्रांत है। मुझे भी अभी तक यह विश्वास नहीं हो रहा कि प्राण के अतिरिक्त आत्मा का कोई अस्तित्व होगा, अनुभव में नहीं आता है। शास्त्र के थ्योरी से, युक्ति से सब कुछ ठीक होने पर भी प्राण न हो और मेरा अस्तित्व अनुभव में आवे, बड़ा कठिन पड़ रहा है। कहना जितना आसान है, मानना जितना आसान है, जानना इतना आसान नहीं है। मान्यता अलग चीज है और जानना माने अनुभव में आना एक अलग चीज है। इतना तो पक्का है कि इंद्रिय के बिना भी मेरा अस्तित्व है, यह तो प्राय अनुभव में आता है। कई बार कान बंद हो गया तो कान के बंद होने पर भी देखने में आ रहा है कि वो जिंदा है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। कई बार आंख बंद हो गए, आंख के अंधे होने पर भी जिंदा है, चल रहा है, घूम रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है। कई बार मुख नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, फिर भी वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, जी रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है, पूरा का पूरा अस्तित्व में रहता है। कई बार पांव नहीं होते हैं तो भी वो अस्तित्व में रहता है, सारा कर्म करता है। हाथ नहीं रहते हैं तो भी वो कर्म करता है, अस्तित्व में रहता है। हाथ न होने मात्र से किसी को शंका नहीं होती है कि ये आत्मा जिंदा है कि मरा है। पांव न होने मात्र से किसी को शंका नहीं रहता है कि ये आत्मा जिंदा है कि मर गया। आंख न होने मात्र से किसी को शंका नहीं रहती कि जिंदा है कि मर गया। वाणी न होने मात्र से शंका नहीं रहती है कि जिंदा है कि मरा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों को भी यही रहा है, क्योंकि देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा कि प्राण के न होने पर भी मनुष्य जिंदा है और खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है। अनुभव में आ रहा है कहीं? तो सारा अस्तित्व ही प्राण पर टिका हुआ है। तो हमें भी शास्त्र वेदांत के सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन अनुभव में प्राण के बिना भी आत्मा का अस्तित्व रह सकता है ये अनुभव में आने में बड़ा कठिन है। आप कह सकते हो सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण स्पंदित हो रहा है, प्राण गतिशील है, प्राण अपना काम कर रहा है। कोई भी यह अनुभव नहीं करता कि प्राण के न होने पर मैं मर गया, या मैं जिस समय था सुषुप्ति में प्राण बिल्कुल नहीं था और मैं था, ऐसा अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो बड़ा अनुभव में नहीं आ रहा है, सिद्धांत तो अपनी जगह है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को आत्मा के नाम पर इसी प्राण ने इज्जत पाया है मनुष्यों में, और प्राणात्मवाद तो लगभग 100 के 100% मनुष्य प्राणात्मवादी हैं, प्राण को आत्मा मानने में तैयार है, दुविधा नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां निकाल देंगे, एक निकाल देंगे तुम रह जाओगे, तुम मानने को तैयार है, घर आ सकते हैं। प्राण निकाल देंगे तुम रह जाओगे, कैसे मानेंगे? इसलिए इस पर विचार कर रहे हैं ज्यादा। पूर्व पक्ष ने इसीलिए प्राण को आत्मा माना, उसका निषेध करते हुए सुरेश्वराचार्य जी ने युक्ति से कहा। युक्ति से और श्रुति से, प्रमाणों से तो हम भी मान रहे हैं। प्राणोप्यात्मा न भवति ज्ञानाभावात् सुसुप्तिषु, कलाम ने संकेत किया था। युक्ति यही है कि प्राण आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण में ज्ञान नहीं है। यह प्राण का जीवन के साथ संबंध है, ये बात कोई भी विवाद नहीं है। हमारे आचार्य भी इस बात का निषेध नहीं करते हैं कि प्राण के साथ जीवन का कोई संबंध नहीं है, ऐसा आचार्य भी निषेध नहीं करते। जीवन के साथ प्राण का संबंध है, प्राण जीव शब्द का अर्थ ही होता है प्राण धारण। प्राण से सीधा संबंध रखने वाले का नाम ही जीव कहते हैं, लेकिन जीवन के साथ संबंध होने मात्र से उसको आत्मा मान लेना चाहिए यह जरूरी नहीं है। क्यों तो आप ये जीवन के साथ संबंध होने पर प्राण को ही क्यों आत्मा मानते हो? शरीर के लोही को भी तो आत्मा मान लो ना, प्राण को क्यों आत्मा मानने चाहते हो? शरीर का जो रक्त है उसी को ही आत्मा मान लो ना भाई।
रक्त के बिना भी जीवन का अस्तित्व होगा, कल्पना कर सकते हो? प्राण के बिना की तो बातें छोड़ दो, रक्त के बिना भी जीवन का अस्तित्व हो सकता है ये कल्पना कर सकते हो? है तो फिर रक्त कोई प्राण आत्मा मान लो, प्राण की क्या बात करते हो तुम? हम ये कहेंगे कि रक्त की भी बात छोड़ दो, किडनी के बिना भी जीवन रह सकता है, दोनों किडनी के बिना भी, किडनी निकालकर बाहर रख दो और किडनी बिल्कुल न हो, है? कल्पना कर सकते हो जीवन की? हृदय की जो धमनी है, धमनी के बिना भी जीवन रह सकता है, कल्पना कर सकते हो? कोई कर सकता है? तो फिर धमनी को ही आत्मा मान लो, प्राण की ही क्यों बात करते हो? रक्त को ही आत्मा मान लो, प्राण की ही क्यों बात करते हो? किडनी को ही आत्मा मान लो, प्राण की ही क्यों बात करते हो? इन सब के आत्मा न मानने का एक ही कारण है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है। प्राणोप्य आत्मा न भवती ज्ञानाभावात्, कहां अनुभव होता है? सुसुप्ति में। जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो उस समय सभी मानते हैं कि प्राण बिल्कुल जैसे जागृत में स्वप्न में क्रियाशील है, उसी तरह सुसुप्ति में भी प्राण क्रियाशील रहता है। फिर भी जागृत में ज्ञान होता है, सुसुप्ति में क्यों नहीं होता? प्राण क्रियाशील होता हुआ भी क्यों नहीं ज्ञान होता सुसुप्ति में? हमने कल एक दृष्टांत दिया था ना साधु का, बड़ा खुश हो गया साधु। क्यों प्रसन्न हुआ? बोले निश्चय हो गया, मैं भी तुम्हारी तरह यही मानता फिरता था कि प्राण ही आत्मा है, प्राण ही सब कुछ करता है, जीवन को चलाता है, जीवन के एक आधार है, जानने वाला भी प्राण है, करने वाला भी प्राण है, सब कुछ प्राण है, प्राण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम भी तुम्हारी तरह भ्रांत थे, लेकिन आज एक कंबल जाने पर वो भ्रांति गई। कंबल जाने का दुख नहीं है, भ्रांति जाने की प्रसन्नता है। ये संतों के यही तो विशेषता है। अध्यास जितने हो उतने ही हट जाना, यही संतों के लिए बड़ी प्रसन्नता का कारण है। वस्तु यदि हट गए, पदार्थ हट गए, उसका कोई दुख नहीं है, अध्यास हट गया इसका प्रसन्नता, इसकी प्रसन्नता है। उसी बात को यहां कहते हैं। और दूसरी युक्ति से सुरेश्वराचार्य जी ने समझाया कि प्राण आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों? जागृत स्वप्नोपभोगार्थ श्रम विच्छित्ति हेतवे। जागृत और स्वप्न में जीवात्मा, जागृत में कर्मजन्य पदार्थों का भोग करता है, स्वप्न में वासना संस्कारजन्य पदार्थों का भोग करता है, और ये हमेशा भोग में श्रम है। भ्रांति यह है कि भोग में सुख है। आचार्य कह रहे हैं भोग में श्रम है, थकान है, परिश्रम है, है? जागृत स्वप्न उपभोगोत्थ श्रम है। देख लो, जो व्यक्ति जितने ज्यादा भोग में लगता है वो उतने ही जल्दी थकान का अनुभव करता है, और उन थकान के लिए, श्रम को हटाने के लिए प्रकृति ने एक विश्राम स्थल किया, बनाया है। जानते हैं प्रकृति इस बात को पहले से जानती थी, ये जीवात्मा को जो उपाधि दी जा रही है वो इसमें इतना भोग आसक्त होगा और भोग मात्र से ये सुखी नहीं रह सकता है, इसलिए थोड़े से विश्रांति के देना चाहिए। तो वो विश्रांति क्या है? तो बोले विश्रांति का प्लेटफॉर्म है सुसुप्ति। ये प्रकृति ने बड़ी दया करके आपको दे दिया है, वो एक व्यवस्था मिला दिया, ये ईश्वर का ही संकल्प है। चाहे ईश्वर की कृपा हो चाहे प्रकृति की दया हो, लेकिन जीवात्मा के ऊपर बड़ी कृपा है ये, यदि यह तीसरा स्टेप जो सुसुप्ति का प्लेटफॉर्म न बनाया होता तो जीवात्मा का क्या होता आज कल्पना नहीं कर सकते। जागृत में तो भोग में थका है, कर्म से थकता है। आप लोग कहते हो कि भोग से क्या थकेगा, कर्म से थकता है, काम से थकता है, भोग से कहीं थकता है? अरे बाबा, भोग भी काम का ही अंग है, कर्म का ही अंग है, और कर्म भी भोग का अंग है, क्योंकि भोग में भी क्रिया होती है। चाहे आप टीवी देखने लग जाओ, आप थक जाएंगे कि नहीं? थक जाएंगे। चाहे आप बैठे रह जाओ, थक जाओगे आप, बैठे बैठे कंटाल गए, बोलोगे कि नहीं? स्वप्न में भी वह अवस्था है। स्वप्न में भले ही सीधा इंद्रियों में कोई श्रम नहीं है, जागृत में मन, इंद्रिय और शरीर तीनों में श्रम है। स्वप्न में शरीर और मन में कोई, इंद्रियों में कोई श्रम नहीं है, फिर भी सबसे बड़ा परिश्रम तो मन को है। इसलिए स्वप्न में भी मन थक जाता है, क्योंकि मन को भी करण मान लिया गया है।